महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य,
ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सौवसाहूलं भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम् महादवलविख्यातं महाबन्धं नमाम्यहम्।
आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें तृतीय अनुभाग बंध अधिकार को देखते हुए चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 30 पर हम आगे 30। यहाँ हमारा प्रकरण काल का चल रहा है। उत्कृष्ट अनुभाग बंध का लगातार काल या अनुत्कृष्ट का लगातार काल, उसकी बात हम मार्गणाओं में देख रहे थे। आपका चश्मा देखो, अभी हम त्रिवेदी में देखने जा रहे हैं। पेज नंबर 30 नीचे का पैराग्राफ। त्रिवेदी जीवों में 4 घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल लोक के समान है, यानी एक समय से 2 समय, मिनिमम एक समय, मैक्सिमम 2 समय, और वो संक्लेश परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि करेगा पंचेंद्रिय। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 100 पल्ल पृथक्त्व प्रमाण है। यहाँ स्त्रीवेद में रहने का उत्कृष्ट काल, जिसको हम काय स्थिति कहते हैं, वो 100 पल्ल पृथक्त्व प्रमाण है। तो उस स्त्रीवेदी ने उत्कृष्ट बंध ही नहीं किया, अनुत्कृष्ट ही किया, ऐसा जीव लेना। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि वो क्षपक श्रेणी में होगा। और हमने देखे ना, वहाँ तो एक एक समय से बढ़ता हुआ अनुभाग है, ये प्रशस्त प्रकृतियाँ है। प्रति समय अनंत गुणा बढ़ते बढ़ते अंतिम समय में उसका उत्कृष्ट होता है, इसलिए उसको उत्कृष्ट क्षपक सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय नहीं, क्षपक सूक्ष्म सांप्राय नहीं, स्त्रीवेद का अंतिम समय। स्त्रीवेदी जीव है ना, 9वें गुण स्थान में अंतर करने के बाद वेद का उदय का काल है, वहां तक उसका एक अंतर्मुहूर्त तक उसका बंध है। परंतु कैसा है, प्रति समय बढ़ता हुआ है अनुभाग बंध। स्थिति बंध में हमने घटता हुआ देखा था, वो स्थिति बंध अंतर्मुहूर्त के बाद घटता है। भले प्रति समय विशुद्धि बढ़ रही है, परंतु अनुभाग प्रति समय प्रशस्त में बढ़ेगा और प्रशस्त में अनंत गुणा घटेगा, अनुभाग के अलग बात। इसलिए अनुभाग का बंध जो अंतिम समय में है वो उत्कृष्ट है, इसलिए उसका काल भी एक समय लिया, अंतर्मूर्ति या 2 समय नहीं लिया। ये समझ में आई बात, वेदनी नाम गोत्र की बात। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ज्ञानावरण के समान है, यानी अनुत्कृष्ट का काल जो है अभी वो श्रीवेद का काल लेना है, यानी मिनिमम एक समय होगा और मैक्सिमम 100 पल्ले पृथक्त्व है। आप कहेंगे अनुत्कृष्ट अनादि से होता है, पर हमारी मार्गणा श्रीवेदी थी। इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवों के जानना चाहिए। अभी उसके जो है 100 सागर पृथक्त्व कहेंगे, इतनी विशेषता है कि वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्या 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 उत्कृष्ट कब होता है? उत्कृष्ट अंतिम समय होता है, पुरुष वेद का अंतिम समय, वहाँ उत्कृष्ट है। उसके पहले क्या था?
अनुत्कृष्ट है।
परंतु देखो देखो
श्रीवेदी में समझ आ गया, एक समय के लिए अनुत्कृष्ट हो सकता है, क्योंकि श्रेणी से उतरते हुए श्रीवेदी हुआ, अनुत्कृष्ट बन करके वो देव में उत्पन्न हो गया, और यहाँ पे इसे नहीं होगा। श्रीवेदी में एक समय अनुत्कृष्ट का,
अनुत्कृष्ट का हमें श्रेणी की लेने की जरूरत नहीं है, वो ज्ञानावरण का अनुत्कृष्ट था।
नहीं यार, विद्या नाम और गोत्र का।
हाँ, वहाँ वो श्रीवेदी हुआ, श्रीवेदी हुआ इस एक समय के लिए तो अनुत्कृष्ट हुआ, और मरकर देव हुआ तो पुरुषवेदी हुआ। एक समय मरण की अपेक्षा हुआ, उपशम श्रेणी में मरण। अब यहाँ क्या होगा? अंतर्मूर्त तक यानी उपशम श्रेणी उतर कर पुरुषवेदी हुआ, अनुत्कृष्ट अनुभाग पुरुषवेदी में अनुत्कृष्ट अनुभाग कर रहा है। किसमें अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त दो उपशम श्रेणी के बीच में भी होता है,
श्रेणी के बीच में भी होता है।
या क्षपक श्रेणी में अपगत वेदी हुआ, फिर अपगत वेदी होगा वो, पुरुष वेद में रहने का काल अंतर्मूर्त वहां पर घटित होता है, क्योंकि पर्याप्त का अंतर्मूर्त बड़ा होगा इससे।
ये बड़ा
हमको छोटा चाहिए ना, यानी उपशम श्रेणी उतर कर पुरुष वेदी हुआ तब अनुत्कृष्ट बंद करने लगा और फिर क्षपक श्रेणी भी चढ़ा, अपगत वेदी हुआ, यानी क्षपक श्रेणी में तो अपगत वेदी होने के पहले उसने उत्कृष्ट किया, तो एक समय पहले अनुत्कृष्ट का अंत हो गया, इसे अंतर्मूर्त होता है। ये ख्याल में आ रही बात पुरुष वेदी में? और सबके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का उत्कृष्ट काल 100 सागर पृथक प्रमाण है, पुरुष वेद में रहने का उत्कृष्ट काल है। नपुसक वेदी जीवों में काय योगी जीवों के समान भंग है, काय योगी में इसके समान बताए ना, ओके समान, जैसे नपुसक वेदी में अभी काय योगी में यानी उसके 4 घाती कर्मों का तो एक समय जघन्य उत्कृष्ट 2 समय हो जाता है 4 घाती का, अनुत्कृष्ट के लिए अनंत काल होगा वो किस समान, क्यों? क्योंकि नपुसक वेदी तो रहा एक इंद्रिय में, रहा पंचेंद्रिय में उत्कृष्ट करता है, तो बाकी असंगी तक रहा तो उसने अनुत्कृष्ट ही किया था 4 घाती के लिए। अब वेदी ने नाम गोत्र का नपुसक वेद का अंतिम समय एक क्षपक में, वहाँ उसका उत्कृष्ट होगा, उसके पहले क्या होगा? पर उसमें कैसे कैसे भंग हो गए अनुत्कृष्ट के, 3 भंग हो जाएंगे ना,
अनादि अनंत,
पर अनादि अनंत नपुसक वेद में कायम रहेगा ऐसा? एक मिनट, काय योगी में कैसे लिया था?
3 भंग हो जाएंगे ना, अनादि साल तो शादी साल कितने होंगे?
काय योगी की बात अलग ली थी ना, वो के समान नहीं बताया था, कुछ थोड़ा रिफरेंस था, सामान्य से काय योगी में क्या लिया था? काय योगी की मार्गणा कहाँ बताइए? औदारी कहीं नहीं, सामान्य से काय योगी, कहाँ योगी जीवन में? हाँ उत्कृष्ट अनुभाग बंद तो एक समय होता है,
एक या दो समय,
अनुत्कृष्ट का एक समय और उत्कृष्ट अनंत काल जो असंख्यात पुद्गल परावर्तन, इतना ही लेना है। वहाँ अनादि अनंत वगैरह बात नहीं ली थी, असंख्यात पुद्गल परावर्तन इतना ही लिया था। वो चार घाती कर्मों का हुआ, वेदिने नाम गोत्र का भी ऐसा ही हुआ। सबके अनुत्कृष्ण असंख्यात पुद्गल परावर्तन सबके लिए वही लिया।
नहीं, के लिए ओके कदम बता दिया।
कहाँ लिया? कहाँ लिया?
विद्या लास्ट लाइफ।
वो औदारिक का योगी की बात है और उत्कृष्ट के लिए है। यहाँ पर भी उत्कृष्ट तो एक समय ओके समान बता ही दिया था। नहीं, वहाँ तो केवल वो अनुत्कृष्ट का असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, यानी नपुसक वेद में तो अनंत अनंत नहीं रहेगा वो। अनादि अनंत नहीं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहो तो बराबर है। बाद में तो वेद पलट जाएगा ना कभी तो, अभव्य इसलिए कायम नपुसक वेद में रहता ही थोड़ी है। वो तो कुछ मार्गना नहीं है ना। जब हम अभव्य ही इतना ही लगाते, नित्य निगोद ऐसा कभी नहीं लगाते। देखो, नपुसक वेदी जीवों में कायोगी जीवों के समान भंग। यहाँ तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन इतना ही कहना है। 31 पेज चौथी लाइन, हमने स्त्रीवेदी पुरुषवेदी और नपुसक वेदी जीवों में देख लिया। अब अपगत वेदी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। सात कर्मों में चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट कब होगा? तो श्रेणी उतर कर अंतिम समय में, और तीन अघाती का श्रेणी चढ़ते समय शपक में अंतिम समय में, इसलिए उसका एक समय घटित होता है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, यानी अपगत वेदी हुआ और एक समय में मर गया तो देव में पुरुष वेदी होकर जन्मा, तो एक समय के लिए उसने अपगत वेदी रहते हुए अनुत्कृष्ट बंद किया। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, हाँ, यानी या चढ़ते समय या उतरते समय श्रेणी में अनुत्कृष्ट किया अपगत वेदी होने पर। शपक श्रेणी में भी ले सकते हैं, अंतिम समय में उत्कृष्ट, उसके पहले अनुत्कृष्ट था तो अंतर्मूर्त हो जाता। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्रायिक संयत जीवों के छह कर्मों का काल जानना चाहिए। अपगत वेदी में सात थे क्योंकि मोहनीय भी था, सूक्ष्म सांप्राय में मोहनीय का बंधन ही, इसलिए छह कर्म लिए। विशेषार्थ, पुरुष वेदी जीव उपशम श्रेणी पर चढ़कर उतरते समय यदि मरकर देव होते हैं तो भी पुरुष वेदी ही होते हैं, और नहीं मरते तो भी पुरुष वेदी होते हैं। यहाँ स्त्रीवेद और नपुसवेद के समान एक समय काल उपलब्ध नहीं होता, ये तो समझ में आवे ऐसी बात है। क्योंकि अनुत्कृष्ट का हमने जो एक समय भी लिया था, अतः इनमें वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त कहा है। उपशम श्रेणी पर चढ़ाकर और उतारने के बाद पुनः अंतर्मूर्त काल के भीतर उपशम श्रेणी पर आरोहण कराने से यह काल उपलब्ध होता है। अपगत वेदी जीवों में उतरते समय अपगत वेद के अंतिम समय में चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध संभव है, तथा वेदनी आदि तीन कर्मों का क्षपक श्रेणी में अपने बंध के अंतिम समय में उत्कृष्ट अनुभाग बंध संभव है, और अपगत वेद का जघन्य काल एक समय व नवे दसवें गुणस्थान के काल की अपेक्षा उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। जगत ने काल एक समय कैसे है, तो मर गया इसलिए, और नहीं मरे तो नवा दसवा काल यानी अपगत वेदी होने पर दस वेद के अंत तक अंतर्मूर्त है। इसलिए अपगत वेद में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय ये मरण की अपेक्षा हमने देखा था, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है, शेष कथन सुगम है। मैंने पूरी श्रेणी चढ़ा के उतारा नहीं है, या तो चढ़ते समय उतरते समय, क्योंकि ग्यारहवें में तो बंद नहीं है, तो अवगत वेग होने पर नौवे का रिमेनिंग भाग और दसवा गुणस्थान, यह अनुत्कृष्ट का काल होगा अंतर्मूल। अब ये तो वेद मार्गणा हो गई, अब कषाय मार्गणा को देखेंगे। क्रोधादि चार कषाय वाले जीव में अलग अलग लेना, क्रोध वाले, मान वाले, माया वाले, लोभ वाले, चार घाती कर्मों का भंग मनोयोगी जीवों के समान है, क्योंकि कषाय का काल ही अंतर्मूर्त है ना, अंतर्मूर्त में ही उसको रखना है, बस कषाय पलटेगी बाद में। यानी चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट तो एक समय या दो समय है, और अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त होगा, ये अनुत्कृष्ट का काल। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, यानी क्षपक में अपने अपने कषाय के अंतिम समय में लेना उसको। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। यानी हम ऐसा ले सकते हैं कि उतरते समय वो क्रोध का उदय शुरू हुआ, मरकर अन्य कषाय में, या उसके कषाय का एक समय बाकी था, उतरते समय में नहीं नहीं उस कषाय में आया
नहीं, क्रोध का उदय हुआ और एक समय में मरकर उसका दूसरा कषाय का
हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों ही
नहीं पर हो सकता है, तो एक समय हो जाएगा ना अनुत्कृष्ट का भी, अनुत्कृष्ट का भी एक समय से अंतर्भूत होगा ना।
वैसे चार कषायों का भी जघन्य काल एक समय बताया है
ना।
वो अनुत्कृष्ट नीचे कहीं पर भी लेना, श्रेणी उतरते हमें मत लेना,
नहीं पर उत्कृष्ट पर तो श्रेणी उतरते समय होगा ना, नहीं
अनुत्कृष्ट की बात
सॉरी अनुत्कृष्ट का।
वेदनीय का तो क्षपक के अंत में ले लेना अपने कषाय के उदय से। देखो अनुत्कृष्ट जो है ना, यानी नीचे कहीं पर भी उसका अनुत्कृष्ट हो रहा था अनादि से, परंतु उस एक किसी एक कषाय में आया, और कषाय का काल अंतर्मूल है पर मिनिमम एक समय भी हो सकता है, इसलिए उसको लेना एक समय। श्रेणी में एक समय में उदय नहीं पलटेगा, मरण की अपेक्षा देव में जाएगा, लोभ का होगा, ये हो सकता है, परंतु हमने पहले देखा था वही कषाय हृदय भी सकता है। देखो क्रोधादि चार कषाय वाले जीवों में चार घाती कर्मों का भंग मनोयोगी जीवों के समान हमने देख लिया। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय क्षपक के अंत में, अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि वो कषाय का काल ही अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होता। विशेषतः क्रोधादि चार कषाय वाले जीवों में वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध क्षपक श्रेणी में होता है, अन्यत्र इनका निरंतर अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद होता रहता है, यानी अनादि से अनुत्कृष्ट ही था, किंतु चारों कषायों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी कषाय का काल एक समय घटित किया, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, इनके यानी वेदनीय नाम गोत्र तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है, शेष कथन सुगम है। यानी वो कषायों का एक समय हमने देखा ना, मरण की अपेक्षा और व्याघात की अपेक्षा हो सकते हैं। व्याघात यानी कोई कषाय शुरू हुआ, लोभ कषाय शुरू हुआ और एक समय में पलट कर वो क्रोध में आ गया, व्याघात से वो क्रोध में आ जाते वापस, पर क्रोध का व्याघात नहीं, पर मरण की अपेक्षा महा मरण के समय क्रोध था एक समय के लिए और उसका कषाय पलट गया, ये हो सकता है। शेष कथन सुगम है, समझ में आई ना बात, ये आगे बढ़ेंगे। विभंग ज्ञानी जीवों में ये मत्ती ज्ञानी श्रुता ज्ञानी के उसके समान बताया था चार घाती कर्मों का, और मत्ती ज्ञानी में तो एक समय वेदिनी नाम गोत्र का भी होता है संयम के सम्मुख वाले के, इसलिए यहाँ डायरेक्ट अभी विभंग ज्ञानी को ले लिया। विभंग ज्ञानी जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओप के समान है, यानी जघन्य एक समय के लिए, उत्कृष्ट दो समय के लिए, ये मिथ्या दृष्टि संकलेश वाला करेगा। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, दो उत्कृष्ट के बीच में भी अनुत्कृष्ट हो सकता है। चार घाती कर्मों के लिए तो सोचने की जरूरत नहीं है, वेदिनी नाम गोत्र अनादि का अनुत्कृष्ट था, यहाँ पर हमको कैसे लेना है, दो उत्कृष्ट के बीच में भी अनुत्कृष्ट हो सकता है, तो जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है। कुछ कम 33 इसलिए लिया, वो विभंग ज्ञानी ही रहा सातवें नरक वाला, मिथ्या दृष्टि रहा और पर्याप्त होने पर विभंग ज्ञान होता है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता, क्योंकि मन पर्याप्ति पूरी होने के पश्चात विभंग ज्ञानी हो जाता है। अब विभंग ज्ञानी में वेदिनी नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग, वो जब सर्व विशुद्धि वाला होगा, ये संयम के सम्मुख वाला मनुष्य लेना है, तो वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, क्योंकि वहाँ करण परिणाम है, एक एक समय का परिणाम विशुद्धि में बढ़ता हुआ अंतिम समय में उसका उत्कृष्ट बंध होगा, यानी विभंग ज्ञानी के लिए वो उत्कृष्ट कहलाएगा। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ज्ञानावरण के समान है, हाँ तो अनुत्कृष्ट का एक समय भी घटित होगा, कैसे होगा विभंग ज्ञानी के रहते हुए अनुत्कृष्ट बंध का काल एक समय कैसे हुआ, ये मेरा प्रश्न है। मनुष्य तिर्यंज के लिए अंतर्मूर्त है वो, फिर से विभंग ज्ञान शुरू हुआ, हाँ,
और उसने करण नदी में विभंग ज्ञान शुरू हुआ और वहाँ पे एक समय देखकर वो उसने सम्यक को प्राप्त कर लिया,
करण लब्धि में विभंग ज्ञान को प्राप्त कर लिया,
नहीं हो सकता है।
विभंग ज्ञान हम इस तरह से घटित करेंगे, अभी नारकी की अपेक्षा देव कोई भी ले सकते, तो समय दृष्टि था, समय दर्शन हुआ, औक्षणिक समय का सासाधन में आया, एक समय के लिए विभंग ज्ञान हुआ और मरकर अन्य पर्याय में गया, तो विभंग ज्ञान तो साथ में जाता नहीं है, सासाधन में एक समय रहकर मरण हुआ, वहां तो नियम से सासाधन में तो विभंग ज्ञान होगा ही होगा, यानी पहले तो उसको समय ज्ञान था, यानी अवधि ज्ञान था, क्योंकि वो भव प्रत्यय में रहते हैं ना, यानी देवनार की सासाधन में वह एक समय हो सकता है। नहीं, मनुष्य तीरंज में विभंग ज्ञान अंतर्मूर्त है, परंतु वो ऐसा जरा अटपटा लगता है उसको कि वहां पर विभंग ज्ञान पैदा हुआ है वगैरह वगैरह, यहाँ तो नियम से होगा ही है ना, देव नारकी में सासाधन में आते ही विभंग ज्ञान हुआ और मरण हुआ, एक समय रह कर मर। और 33 सागर तो समझ में आते हैं। यानी अभी विशेषात में क्या लिखते देख लेते हैं। विशेषात जो मिथ्या दृष्टि मनुष्य, पेज नंबर 32, संयम के अभिमुख और सर्व विशुद्ध होता है, उसके अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध के समय वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध होता है, अन्यत्र इसके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध होता है। इसलिए इन तीन कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है, तथा विभंग ज्ञान का जघन्य काल एक समय वही घटित होगा देवनारकी में, सासागन में एक समय के लिए होगा, एक समय में रहा और मरा। उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर, इससे सातों कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर कहा है, शेष कथन सुगम है। आविनिबोधि ज्ञानी, हाँ हाँ,
लास्ट टाइम आपने लिखवाया था तथा विभंग, थर्ड लाइन ऊपर से, सॉरी चौथी लाइन, तथा विभंग ज्ञान का जघन्य काल एक समय। अभी आपने बताया कि देव और नारकी मरेगा साधन में, यहाँ लिखे मति और मनुष्य तीन छे। लेकिन
साधन जैसे संयुक्त लगता है ना,
यानी मनुष्य तीरंज को विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ और एक समय में मर गया, ऐसा लेना?
हाँ, वो विभंग ज्ञान उत्पन्न होके मरा वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते वो बात नहीं, परंतु सासादन वाली बात देव नारकी में ज्यादा अच्छी बराबर लगती है।
तो करेक्ट कौन सा है?
सासादन में ले लो, पता नहीं। यानी मनुष्य तीरंज में मरण के पूर्व एक समय प्रकट हुआ, वो क्वेरी में रख सकते हैं, मगर तो क्वेरी में रखना मनुष्य तीरंज की बात, पर तो सासागन में तो बिल्कुल पक्का घटित होता ही होता है। अभिनिबोधि ज्ञानी आगे बढ़ेंगे। शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अभी हम देखते हैं ना ज्ञानावरण, हाँ, अभिनिबोधि ज्ञानी है
उसको
मिथ्यात्व के सन्मुख होगा, वहाँ एक समय के अंतिम समय में उसका उत्कृष्ट होगा, और बाकी विशुद्धि में क्षपक में उसके तीन कर्मों का जगह उत्कृष्ट होगा, उत्कृष्ट होगा। वेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट है सूक्ष्म सांप्राय क्षपक के अंतिम समय में, इसलिए दोनों ओर उसका उत्कृष्ट काल एक समय ही लिया। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जगन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि समय दर्शन में रहने का जगन्य काल अंतर्मूर्त लिया। और उत्कृष्ट काल साधिक 66 सागर है। देखो वेदिनी नाम गोत्र में भी ऐसा ही लिया, उसका अंतर्मूर्त कैसा होगा? दो उपशम श्रेणी के बीच। या अनुत्कृष्ट में वैसे अंतर्मूर्त को समय दृष्टि रहा, बस इतना ही, यानी समय तो में रहने का काल इतना ही लेना है, यानी समय तो का जघन्य काल। यानी जघन्य काल अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट काल साधिक 66 सागर। इसी प्रकार वो अभिनिबोधिक ज्ञान इतना ही लिया है, तो उपशम सम्यक, तो फिर वेदक सम्यक, तो फिर क्षायिक सम्यक, तो साविक छासर सागर हो जाता है। इसी प्रकार अवधि दर्शनी, सम्यक दृष्टि और वेदक सम्यक दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वेदक सम्यक दृष्टि जीवों में अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल पूरा छासर सागर है, क्योंकि वेदक सम्यक तो मैं रखना है, जो साधिक जो लिखा था वो औषमिक का भी अंतर्मुद बढ़ाया और क्षायिक का भी कुछ काल बढ़ाया। विशेषार्थ जो असंयत समय दृष्टि मिथ्यात्व के अभिमुख होता है और अंतिम समय में उत्कृष्ट अनुभव करता है, उसके इन तीन समय ज्ञानों में चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभव बंद होता है। मैंने अभिनिवेशिक श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी ये तीन समय ज्ञान तथा वेदनी आदि तीन कर्मों का क्षपक श्रेणी में बंध के अंतिम समय में उत्कृष्ट अनुभाग बंध होता है। इसलिए यहाँ उक्त सातों कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, दोनों के स्वामी अलग अलग पॉइंट पर है। चार घाती तो मिथ्या तो के सन्मुख वाले को लिया और तीन अघाती को तो क्षपक में लिया सूक्ष्म सांप्रदाय में, तथा इन तीन ज्ञानों का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, यानी सम्यक समय रहने का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल साधिक छासर सागर है। इसलिए इनमें उक्त सातों कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त उत्कृष्ट काल साधिक छासर सागर कहा है। यह प्ररूपणा सम्यक दृष्टि और वेदक समृद्धि जीवों में अविकल घटित हो जाती है। इसलिए इन मार्गणाओं में भी पूर्वोक्त प्रकार से ही काल कहा है, किंतु इतना विशेष समझना है कि वेदक सम्यक्तों का उत्कृष्ट काल पूरा छासर सागर ही है, इसलिए उसमें उक्त सातों कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल छासर सागर ही होता है, क्योंकि वो तो कृतकृत्य वेदक सहित वाला छासर सागर लेना है उसको। मन पर्य ज्ञानी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, अभी उसके स्वामी अलग अलग, चार घाती के लिए असंयम के सन्मुख होगा और तीन वेदनीय नाम गोत्र के लिए क्षपक में लेना। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, यानी उपशम श्रेणी उतरते दसवें में एक समय में मरण हुआ, दसवें में बंध किया और मरण हुआ, तो अनुत्कृष्ट का एक समय हो गया, क्योंकि मरते समय वहां तो मन पर ही ज्ञानी थे, देव में तो मतिशुद्ध अवधि वाले हो जाएंगे। और अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है, यानी मन पर ही ज्ञान में रहने का काल, क्योंकि वो तो संयम होने के पश्चात ही मन पर ज्ञान प्रकट होता है और पूर्व कोटि तक पूरा रहा तो कुछ कम पूर्व कोटि हो जाता है। इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत और चेतोपस्थापना संयत जीवों के जानना चाहिए। यहाँ तो स्वामित्व नहीं है इसलिए वो एक समय वाली बात तो घटित हो ही जाती है और कुछ कम पूर्व कोटि वाली बात भी घटित हो जाती है। परिहार विशुद्धि संयत जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। परिहार विशुद्धि में सर्व विशुद्ध वाला जो है अप्रमत्त, वो वेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट करेगा और सामायिक छेदोपासना के सन्मुख वाला प्रमत्त वो चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट करेगा, पर होगा तो एक समय। और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त, परिहार विशुद्धि की बात चल रही है ना, यानी अंतर्मूर्त में वो परिहार विशुद्धि छूट गई इस तरह से ले सकते हैं। उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है। किसका किसका उत्कृष्ट? वेदनी नाम गोत्र का सर्व विशुद्ध वाला होगा, दो समय लिया, एक समय लिया ना,
दो समय के लिए नहीं हो सकता है क्योंकि तो नीचे का गुण स्थान है,
अथवा अथवा एक समय लिया उत्कृष्ट, दो समय लिया, दोनों ही लिए। देखो ऐसा ले सकते हैं ना कि अगर वो शायद समय को प्राप्त कर रहा है तो कैसे लेंगे हम, करण लब्धि के अंत में उसका उत्कृष्ट होगा ना, तो अथवा इसीलिए दिया वेदिनी नाम गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंद काल जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय है, वो रेगुलर रेगुलर अप्रमत्त वाला लेना, विशुद्धि अधिक विशुद्धि वाला। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल वही है ने पूर्व कोटि में कुछ कम करना ना 38 वर्ष, क्योंकि हमने देखा परिहार विशुद्धि किसको प्रकट होती है, तो 30 वर्ष तक हाँ सुखी जीवन बिताया, 8 वर्ष तक वो तो केवल हाँ तीर्थंकर के पादमूल में प्रत्याख्यान पूर्व का अभ्यास किया उसने। इसी प्रकार संयता संयत जीवों के जानना चाहिए, यानी संयता संयत में भी कुछ कम पूर्व कोटि उसका काल है और मिनिमम काल उसका भी अंतर्मूर्त है, वहां पर भी ऐसे ही समझना। स्वामित्व तो हमने पहले देखा था, स्वामित्व में चार घाती का स्वामी कौन है, मिथ्या तो के समय, और वेदिनी नाम गोत्र का तो संयम के समय, एक एक समय होगा। चक्षु दर्शनी जीवों में त्रस पर्याप्त जीवों के समान भंग है, यानी उसकी काय स्थिति उसके समान है, परिहार विशेषात परिहार विशुद्धि संयत जीवों में वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का काल दो प्रकार से बतलाया है। प्रथम तो चार घाती कर्मों के समान ही इनका काल है, फिर प्रकारांतर से इनका दूसरा काल कहा है, इस भेद का कारण क्या है यह विचारणीय है। विदित होता है कि सर्वविशुद्ध प्रमत्त संयत के अप्रमत्त संयत के इनका उत्कृष्ट अनुभाग बंद मानने पर इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय उपलब्ध होता है, और दर्शन मुनि की क्षपणा वाले सर्व विशुद्ध अप्रमत्त संयत के अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध के होने पर जब इनका उत्कृष्ट अनुभाग बंध माना जाता है तब इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय उपलब्ध, जहाँ करण परिणाम है वहाँ एक समय उपलब्ध हो सकता है। इसी प्रकार प्रथम विकल्प की अपेक्षा इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय यानी दो उत्कृष्ट के बीच में, और दूसरे विकल्प की अपेक्षा अंतर्मूर्त घटित कर लेना चाहिए, शेष कथन सुगम है, यानी वहाँ अनुत्कृष्ट एक समय नहीं होगा क्योंकि अंतिम समय में उत्कृष्ट लिया उसका दर्शन मुन की क्षपणा में, तो उसके पहले यानी अंतर्मूर्त तो मिनिमम होगा ना, परिहार विशुद्धि का मिनिमम काल अंतर्मूर्त है तो वहां पर उसको ले लेना। अनुत्कृष्ट के दो अपेक्षा में, एक अपेक्षा में लेंगे दूसरी अपेक्षा में नहीं लेंगे, कहीं पर उसकी उसको विशुद्धि होती है एक समय और दो समय के लिए, वहां पर दो उत्कृष्ट के बीच में अनुत्कृष्ट हो सकता है, पर जहां दर्शन मुखी क्षपणा में करण लब्धि के अंत में उसको वहां एक समय नहीं होगा, अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त होगा। अब 33 पेज, मरण नहीं होगा कोई, पर मरण की बात लेने की जरूरत ही नहीं है, अन्यत्र भी जब हम एक समय लेते तो मरण की अपेक्षा नहीं लेते। पांच लेशा वाले जीव में शुक्ल लेशा की बात छोड़ी, सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय है, क्योंकि चार घाती कर्मों का तो सर्वसंक्लेश वाला मिथ्या दृष्टि ले लेना है, तो दो समय बता दिया। वेदिनी नाम गोत्र के लिए भी इन लेशाओं में उसकी उसकी अपनी जो कृष्णनील कपोत में चौथे गुण स्थान वाला लेना है सर्व विशुद्ध, और बाकी में तो सातवें गुण स्थान में डायरेक्ट लेना है। तो दो समय घटित होता है, अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद काल, जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल, क्योंकि जहां दो समय उत्कृष्ट हो सकता है वहां अनुत्कृष्ट बीच में भी हो सकता है, तो जघन्य काल एक समय है। उत्कृष्ट काल क्रम से साधिक 33 सागर, यानी वो कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट काल है, उसने उत्कृष्ट बंध किया ही नहीं, नरक में जाने के पहले अंतर्मुर से और आने पर अंतर्मुर, ये कृष्ण लेशा का काल। साधिक 17 सागर नील लेशा का काल, साधिक 7 सागर कपोत लेशा का लगातार काल, साधिक 2 सागर पीत लेशा वाले, साधिक 18 सागर पद्म लेशा वाले। इतनी विशेषता है कि पीत और पद्म लेशा वाले जीवों में वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के विषय में यदि दर्शन मोह का क्षपक जीव है तो स्पष्ट मूल इसमें बताया, यदि दर्शन मोह खवगस्य स्वामित्ता दो, दर्शन मोह के क्षपक को अगर स्वामित्व देते हैं तो स्वामित्व की अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल काय स्थिति प्रमाण है। देखो पीत पद्मलेशा बने वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के, दर्शन मोह के क्षपक होगा तो उत्कृष्ट का एक समय होगा, अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त क्योंकि वो तो एक अंतर्मूर्त में लेशा पलटेगी, वही तो कहते हैं वो तो उत्कृष्ट हो जाएगा, उत्कृष्ट काल उनमें लेना, इसलिए काय स्थिति कहा, काय स्थिति ने पीत लेशा का काल कितना है साधिक 2 सागर, पद्म लेशा का साधिक 18 सागर, जाते आते दोनों पर अंतर्मूर्त बढ़ा देना। देखो विशेषार्थ, पीत और पद्म लेशा वाले दर्शन मोहने के क्षपक जीव के अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध के समय वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है। एक समय वो कृतकृत्य वेदक होके एक समय में मरा, पर मरा तो भी उसकी लेशा वही रहेगी ना, एक में और सपना करके एक समय में, एक मिनट, नाम और गोत्र उत्कृष्ट अनुभव जगन अनुत्कृष्ट अनुभव जगन का लेख में उपलब्ध होता, नहीं उसके लेशा पलटने की अपेक्षा लेना, दर्शन मौखिक सपना करते समय लेशा पलट गए उसके, किसी भी तीनों लेशा में हो सकता है ना उसका, पीत पद्म शुक्ल तीनों में दर्शन मोह की क्षपणा तो हो सकती है। शेष कथन सुगम शुक्ल लेशा वाले जीव में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओघ के समान है, इन्हें एक से दो समय हम मिथ्या दृष्टि देव करेगा वो तो उसमें चला जाएगा स्वामित्व में, अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, दो उत्कृष्ट के बीच में, उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है क्योंकि दोनों उसकी रेशा बढ़ाना, शुक्ल लेशा वाले साधिक 33 सागर है, वो लेना सर्वार सिद्धि वाला लेना, शुक्ल लेशा है ना यहाँ पर, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का जगन में और उत्कृष्ट का लेख समय वो तो क्षपक श्रेणी में, अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जगन्य काल अंतर्मूर्त है क्योंकि हाँ लेशा पलटती है मनुष्य तीर है, मनुष्यों में तो लेशा पलटने की अपेक्षा ले लेना। उत्कृष्ट काल सादिक 33 सागर है, यहाँ पर क्षायिक समय दृष्टि जीवों में शुक्ल लेशा वाले हमने काट दिया था क्योंकि उसके वो अलग अलग पैराग्राफ है, विशेषार्थ के बाद में वो है, इसलिए यहाँ का वाक्य निकाल दिया हमने, डायरेक्ट विशेषार्थ पढ़ते हैं। शुक्ल लेशा में वेदनीय नाम और गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंधक क्षपक श्रेणी में उपलब्ध होता है, यानी वो अंतिम अनुभाग बंधक, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंधक का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है, तथा इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंधक का जगन्य काल अंतर्मूर्त है, जो शुक्ल लेशा का काल लेना है और उत्कृष्ट काल सादिक 33 सागर है, यह स्पष्ट ही है, कारण कि शुक्ल लेशा का यही काल है, यानी शुक्ल लेशा का जगन्य और उत्कृष्ट काल ले लिया, इतने काल तक इसके निरंतर अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद होता रहता है, शेष कथन सुगम है। हाँ, अब यहाँ पर क्षायिक समय दृष्टि जीवों में शुक्ल लेशा वाले जीवों के समान भंग है, क्या है यहाँ पर वो तो चतो एक और दो समय तो वहां पर भी होता है, क्योंकि चौथे गुणस्थान वाला जो उसका सर्व संकलेश है ना, यहाँ तो कोई मिथ्या तो में जाएगा नहीं, फिर भी एक और दो समय घटित हो जाएगा, तो उसका एक दो समय होता है तो अनुत्कृष्ट का एक समय भी घटित होगा, और फिर उत्कृष्ट काल तो सादिक 33 अगर क्षायिक में रहने का काल लेना है वो तो होता ही होता है, फिर वेदिनी नाम गोत्र के लिए वो क्षपक श्रेणी में लेना है क्षायिक समय दृष्टि में, और अनुत्कृष्ट के लिए अंतर्मूर्त कैसे होगा, हाँ दो श्रेणी के दो उपशन श्रेणी के बीच क्या 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 शाइक करके श्रेणी चढ़ के मोक्ष चला गया, शाइक होने के लिए कुछ काल लगेगा कि नहीं होगा, हाँ लेते हैं ना, या वहाँ दो उपशम श्रेणी के बीच है, उपशम श्रेणी उतरा और फिर शपक श्रेणी चढ़ा, ऐसा भी ले सकते हैं, दोनों ओर से ले सकते हैं, यहाँ क्या कहते देखो, नहीं उन्होंने कुछ लिखा नहीं, शुक्ल लेशा के समान है बस इतना ही कह दिया, विशेषार्थ में उसको नहीं उठाया उन्होंने। उपशम समय दृष्टि जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का जगन्य और उत्कृष्ट का लेख क्या, अरे हमें तो पहली लाइन पढ़ रही हूँ मैं, हम उपशम समय दृष्टि जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि उपशम समय तो में जो चौथे गुणस्थान वाला मिथ्या तो के सन्मुख है उसके चार घाती का उत्कृष्ट होगा, और उपशम समय दृष्टि में जो दसवें द्वितीय उपशम में और दसवें के अंत में वो उसका जगन्य होगा, किसका सॉरी उत्कृष्ट होगा वेदिनी नाम को, अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि उपशम समय में तो अंतर्मूर्त रहेगा ही रहेगा जी, और जो उत्कृष्ट नहीं कर रहा है तो अनुत्कृष्ट ही करेगा, इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों में जानना चाहिए, इसमें भी स्वामित्व की अपेक्षा चार घाती का मिथ्यात्व के सम्मुख और तीन का चौथे के सम्मुख वाले, यानी उसका एक ही समय होता है और अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त होगा, क्योंकि ना उषम सम्यक्त में मरण है अंतर्मुख पहले और ना ही द्वितीय ऑप्शन वाले के मरण है परंतु उसको तो द्वितीय ऑप्शन फिर से नहीं नहीं सकता। आपका प्रश्न है उपशम सम्यक्त के काल में दो बार श्रेणी चढ़ता है नहीं, द्वितीय उपशम के साथ एक बार श्रेणी चढ़ के उतरता है तो फिर वेदक हो जाता है बीच में, उसको दोबारा द्वितीय उपशम करना पड़ता है, बिना उसके नहीं चढ़ता। एक ही बार द्वितीय उपशम किया उसमें दो बार श्रेणी नहीं चढ़ी जाती। देखो अभी सासाधन की बात है, सासाधन सम्यदृष्टि जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है, परंतु चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट काल एक समय ही होगा अंतिम समय। हाँ वो बाद में लिखा है, अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल छह अवधि है। यहाँ क्या लिखा, इतनी विशेषता है कि चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल एक समय है। अभी विशेषाग उपशम सम्यक्त्व में चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध उत्कृष्ट संक्लेश वाले मिथ्यात्व के अभिमुख जीव के अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध के समय होता है, तथा वेदिनी नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध के समय होता है। अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग द्वितीय उपशम के साथ दसवें गुण स्थान का अंतिम समय है, इसलिए इसमें उक्त सातों कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व का काल ही अंतर्मूर्त है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। यह प्ररूपणा सम्यक मिथ्यादृष्टि जीवों के इसी प्रकार घटित हो जाती है, इसलिए इसमें उक्त सातों कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल उपशम सम्यदृष्टि जीवों के समान कहा। यहाँ पर भी मरण नहीं है तो ये सब बातें घटित हो जाती हैं। सासाधन सम्यदृष्टि जीव के चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध मिथ्यात्व के अभिमुख अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध के समय होता है, यानी वो मिथ्यात्व में जाने वाला तो प्रति समय उसका घाती कर्मों का बढ़ता चला जाता है, इसलिए एक समय के लिए उत्कृष्ट होगा। और वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध सर्व विशुद्ध जीव के होता है, तथा सासाधन सम्यक्त्व का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल छह अवधि है, इसलिए इसमें चार घाती कर्मों के कर्मों से लिखा है, कर्मों के चाहिए ना, विशेषार्थ का नीचे से एक दो तीन चौथी लाइन पांचवी में लास्ट सासाधन की बात हो रही थी, इसलिए इसमें चार घाती कर्मों के चाहिए, उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, क्योंकि मिथ्यात्व के सन्मुख है, और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, वो तो सासाधन में रहने का एक समय काल, और उत्कृष्ट काल छह अवली कहा है, ये तो समझ में आई ना बात। सासाधन में चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट कब है, मिथ्यात्व के सन्मुख वाले को, वहां एक समय को ही लिया। वेदनीय और नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय, ये सर्व विशुद्ध वाले को लेना है, तो एक या दो समय होता है। यहाँ कोई करण परिणाम तो है ही नहीं है, यहाँ कोई मिथ्यात्व के सन्मुख वाली अवस्था नहीं है कि चार घाती का उत्कृष्ट हो जाए, तथा सभी का एक समय ही लिया, मिथ्यात्व के एक सभी का इक्वल नहीं होगा, अलग अलग होगा, जो कोई उत्कृष्ट करता है उसकी बात, सबको समान बंध नहीं है, अलग 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 जो विशुद्धि के जो संकलेश के अलग अलग परिणामों में भी मिथ्यात्व के सन्मुख हो जाता है। तो वेदिनी नाम गोत्र का भी है, अनुत्कृष्ट का एक समय और उत्कृष्ट छह अवधि जो साधन का काल है। अब आगे बढ़ते हैं, संगी जीवों में पुरुष वेदी जीवों के समान भंग है, यानी संगी जीवों में जो चार जो है घाती कर्म, उत्कृष्ट एक समय से दो समय, और संगी में पुरुष वेदी के समान क्यों कहा? अनुत्कृष्ट के लिए क्या सौ सागर पृथक को कहना पड़ेगा ना? नहीं, पंचेंद्रिय कहने से वो उसका ज्यादा होगा, हजार सागर में कुछ अधिक पंचेंद्रिय कहेंगे, यहाँ संगी कहा है। सौ सागर पृथक है ना संगी जीव में, इसीलिए तो पुरुष वेदी के समान लिखा है ना। क्या कहते
हैं?
वो बात अलग है, वो तीरियन चायु का अंतर है। वही सौ सागर पृथक्त्व, संगी का काल सौ सागर पृथक्त्व ही है। पंचेंद्रिय में हजार सागर में और पुरुकोटि पृथक्त्व मिला दिए थे। कल ही हमने पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त की बात पढ़ी थी, नहीं समझे?
कल में नहीं था।
पूर्व कोटि पृथक तो अधिक हजार सागर लिए और पंचेंद्रिय पर्याप्त में हजार सागर लिए और यहाँ केवल संगी जी लिए, तो संगी में सौ सागर पृथक होगा। संगी कहने से उसके पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आ गए। तो चार घाती कर्मों का देखा ना हमने, एक या दो समय और अनुत्कृष्ट, उसकी काय स्थिति सौ सागर पृथक। वेदिनी नाम गोत्र में शपक के होगा वो एक उत्कृष्ट का काल एक समय, अनुत्कृष्ट का काल जो उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं सौ सागर पृथक। आहारक जीवों में ओग के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल बादर एकेंद्रियों के समान है, अंगुल का असंख्यात भाग, ये समानता है उसमें। बादर एकेंद्रियों की भी काय स्थिति अंगुल का असंख्यात भाग था। आहारक पने रहने का उत्कृष्ट काल, यानी हर बार वो मरकर विग्रह गति में बिना मोड़ के गया है, उसको आहारक का आहारक ही रहा। अनाहारक जीवों में, अनाहारक हुआ है, अनाहारक जीवों में कार्मण कायोगी जीवों के भंग है, समान भंग है। हमने देखा ना उत्कृष्ट का एक समय होगा ना, दूसरे समय में उत्कृष्ट होता है ना, अनुत्कृष्ट का तो एक समय घटित होता है और मैक्सिमम तीन समय होगा अनुत्कृष्ट का। विशेषत आहारक जीवों का उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। बादर एकेंद्रियों की काय स्थिति भी इतनी है, केवल काल की समानता, इसलिए उसके समान बताया। इसलिए आहारक जीवों में अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल बादर एकेंद्रियों के समान कहा है, शेष कथन सुगम है। इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ। अभी जघन्य जघन्य लेना हमको, अब जघन्य में गाती को उल्टा लेना, घाती को क्षपक में लेना, वेदिनीय नाम को तो मध्यम परिणाम समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि, और गोत्र का मध्यम परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि लेना है, या गोत्र का सातवें नरक का नारकी भी ले सकते हैं, वो जहाँ जो मार्गणा होगी। अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ हमारा स्वामित्व का विषय नहीं है, हमारा काल का विषय, पर स्वामित्व देखने से उसको क्लैरिटी होगी। देखो जघन्य का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि चार घाती कर्म तो क्षपक में हो गए जघन्य, और गोत्र का जघन्य तो सम्यक के सम्मुख वाला सातवें नरक का नारकी लेना, वो भी करण परिणाम है, उसका भी जघन्य वहीं पर होगा, तो उसका एक समय है। और जघन्य अनुभाग बंध के तीन भंग है, अनादि अनंत। पहले में पहले चार घाती कर्मों के लिए लेते हैं, जो क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा वो सारे तो अजगण्य ही है, तो उसके अनादि अनंत होगा, अनादि शांत होगा और सादि शांत होगा। वेदनी और नाम कर्म के यहाँ गोत्र कर्म के लिए भी उन्होंने क्या लिया, अजगण्य के उसके भी तीन भंग बताए, गोत्र के भी तीन भंग बताए। सातवें नरक में सम्यक के सम्मुख होगा, अनादि अनंत अभव्य है तो अनादि अनंत होगा, वो तो कभी सम्यक के सम्मुख होगा ही नहीं, बोले सातवें नरक में गया है अभव्य तो नहीं है, तो अनादि अनंत हो जाता है। अनादि शांत भी वो तो श्रेणी के भी है, सबसे पहली बार उसने सातवें नरक में सम्यक तो प्राप्त किया है तो हो सकता है। और भी शादी शांत का अनुत्कृष्ट है, अजगण्य ही लेना नहीं आप, शादी शांत में तो ना सम्यक तो के सन्मुख हुआ, अंतर्मूर्त भी होगा ना मिनिमम, फिर दोबारा सम्यक तो प्राप्त किया, सातवें नरक में ही रहा, तो पल्ले का असंख्यात भाग के बंद करेगा। वेदक में पल्ली के असंख्या पे भाग दोबारा उपशम समय को उपशम समय को करेगी, देखो उसमें फिर केवल तीन भंग बताए। ओग में लेना है ना हमको, किसका आप सोच रहे
हैं,
एक समय है,
एक समय है।
अभी चार घाती कर्म में तो आसान है ना, दो बार श्रेणी चढ़ा तो अजगण्य का अंतर्मुख हो गया, और फिर अर्धपुद्गल परावर्तन भी हो गया कुछ कम, ये हो सकता कि नहीं, अर्धपुद्गल एक बार किया सातवें नरक में, फिर इतने लंबा घूमा और फिर यहाँ सम्यक के सन्मुख हुआ लास्ट लास्ट में, दो चार भाव करके मनुष्य होकर मोक्ष चला गया। गोत्र कर्म के अजगण्य का मिनिमम काल कितना है, वो जघन्य है ना, वो जघन्य है तो दो उपशम अंतर्मूल तो हो ही जाता है ना, और अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन। यानी बाद में उसके जघन्य करने की जरूरत नहीं, वो तो मोक्ष ही चला गया ना, बंद ही बंद करेगा। वेदनी और नाम कर्म के, वो गोत्र को छोड़ देना भी, वेदनी और नाम कर्म पेज नंबर 35। जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय है, वो मध्यम परिणाम में चार समय लेते हैं, उत्कृष्ट का दो समय जहाँ लेते हैं ना अन्यत्र, यहाँ मध्यम परिणाम में चार समय लेते हैं, उसका बात है, भुजगार चार समय वो बात अलग है, और यहाँ अनुभाग में कितना भुजगार होगा वो बात अलग है। और यहाँ क्या कहते हैं, वेदी ने नाम कर्म का जघन्य कहाँ है, तो मध्यम परिणाम में है, परिवर्तमान वाला वो जो है उत्कृष्ट चार समय होते हैं। और जघन्य अनुभाग बंद का, जघन्य काल एक समय है, क्योंकि दो जघन्य के बीच में अजघन्य हो ही सकता है, कहीं पर भी उसके परिवर्तमान वाला है ना। उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, यानी सूक्ष्म में रहने का लगातार काल जो है ना। ओ जघन्य, एक मिनट, अजघन्य अनुभाग बंद का
अभी तो इसी देखा था ना, सभी परिवार में जघन्य
मैंने इतने काल के बाद नियम से वो जघन्य करेगा, ये उसका अर्थ। ये परिणामों के जो भेद है असंख्यात लोक प्रमाण, उसमें से लेना है, उसकी अपेक्षा लेना पड़ेगा। क्योंकि जघन्य, हाँ आगे आगे लिखा है ना, इन दोनों कर्मों का जघन्य अनुभाग बंद सूक्ष्म एकेंद्रियों में नहीं होता, यही है असंख्यात लोग। उसमें जघन्य नहीं होगा, लगातार अजघन्य रहेगा ये। वो हम विशेषांत में पढ़ेंगे बाद में फिर दोबारा। अभी तो हमने असंख्यात लोग देखा, आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंद का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल चार समय है, यानी वेद जो मध्यम परिणाम में आयु कर्म का भी जघन्य मध्यम परिणाम में ही होता है, तो उत्कृष्ट काल चार समय लिया। उत्कृष्ट अनुभाग बंद के दो ही समय लिए थे, यहाँ जघन्य के चार समय लिए। और जघन्य अनुभाग बंद का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी वो तो एक समय जो है वो दो जगन्य के बीच में लेना। अंतर्मूर्त तो आयु बनती है, इसी प्रकार आयु कर्म का विचार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इसी प्रकार ओघ के समान जो जो हमने देखा था, मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी असंयत और चक्षुदर्शनी भव्य और मिथ्यादृष्टि जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि भव्यों में अनादि अनंत भंग नहीं है। जो हमने अजगण्य के तीन भंग किए थे, किसमें, गोत्र में और चार घाती कर्मों में भी, तो अभव्यों में वो भव्यों में अनादि अनंत नहीं होगा। अभव्य है वही अनादि अनंत है, तो उसके समान कहाँ कहाँ, मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी असंयत और चक्षु दर्शनी भव्य और मिथ्या दृष्टि। भव्य में तो सभी स्वामी भी ओक के समान होगा, बाकी स्वामी में डिफरेंस पड़ेगा, परंतु वो जघन्य का काल अजघन्य का काल वो सब बातें घटित हो जाएगी।
असंयत में भी घटित हो जाएगा,
हाँ ना,
अनादि अनंत ही घटित होगा
ना, क्यों नहीं होगा।
असंयत तो
पहले से चौथे तक है, तो अनादि अनंत पहले में रहा ना भव्य, अनादि अनंत विकल्प मात्र अभव्य की अपेक्षा है, तो उसके चौथे गुणस्थान का सवाल नहीं है, वो पहले में ही रहा है कायम। अभव्य मार्गणा में गुणस्थान पहला है उसका। विशेषार्थ, चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध शपक श्रेणी में बंध विच्छित्ति के अंतिम समय में होता है, इसलिए हर एक की अपनी अपनी तीन घाती और मोहनी को अलग अलग ले लिया अपनी अपनी बंध विच्छित्ति के समय। तथा गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध सातवीं पृथ्वी में सम्यक्त्व के अभिमुख जीव के बंध विच्छित्ति के अंतिम समय में होता है, इसलिए इन पांचों कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। इनके अजगण्य अनुभाग के तीन भंग है, अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत। अनादि अनंत तो अभवियों के होता है, बाकी अनादि शांत और सादि शांत हो गए। सादि शांत अजगण्य अनुभाग बंध का जगन्य काल अंतर्मुख, वो तो श्रेणी में देखा था हमने, दो श्रेणी के बीच में उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। खुलासा इस प्रकार है, किसी एक जीव ने उच्चम श्रेणी पर आरोहण किया और उतरकर पुनः अंतर्मुख काल के भीतर वह क्षपक श्रेणी पर आरोहण करके उक्त कर्मों का जगन्य अनुभाग बंद करता है, तब उसके उक्त चार कर्मों के अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल अंतर्मूर्त उपलब्ध होता है। और यदि कोई अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के प्रारंभ में उपशम श्रेणी पर आरोहण कर उपशांत मोह हो गिरता है तथा अंत में एक क्षपक श्रेणी पर आरोहण कर मुक्ति लाभ करता है, तब उसके उक्त कर्मों के अजगन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण उपलब्ध होता है। यानी दो बार उसने श्रेणी चढ़ी, पहली बार उपशम और दूसरी बार क्षपक। वेदनीय और नाम कर्म का जगन्य अनुभाग बंध परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाले जीव के होता है, इसलिए इसका जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। ये महत्व की बात है, यहाँ मध्यम परिणाम होते हैं जगन्य के लिए, वहाँ चार समय। इनके अजगन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि जो सम्य दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव एक समय तक अजघन्य अनुभाग बंद करके जघन्य अनुभाग बंद करने लगता है, यानी एक समय के लिए बीच में अजघन्य किया, पहले जघन्य फिर अजघन्य फिर जघन्य, उसके इनके अजघन्य अनुभाग बंद का एक समय काल ही उपलब्ध होता है। इनके अजघन्य अनुभाग बंद का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। कारण यह कि इन दोनों कर्मों का जगन्य अनुभाग बंध सूक्ष्म एकेंद्रियों में नहीं होता, उनके निरंतर अजगन्य अनुभाग बंध होता रहता है और उनकी उत्कृष्ट काय स्थिति असंख्यात लोक प्रमाण कहिए। आयु कर्म के ऐसा भी ले सकते हैं कि हम, क्योंकि मध्यम परिणाम है और कोई भी परिणाम लौट कर इतने असंख्यात लोक प्रमाण काल के बाद वो ओरिजिनल उस परिणाम पर आ जाता है।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग
जो हमने जो अनुभाग अध्यवसान स्थान देखे थे ना, वो असंख्यात लोक प्रमाण है, तो वो परिणाम इतने काल के बाद जरूर होगा ही होगा।
तो उन्होंने क्या बताया, कोई भी
स्वामित्व में ना,
हाँ तो
पे जैसे मैंने वहाँ पर भी देखा था, उत्कृष्ट के लिए भी देखा था, एक इंद्रियों की अपेक्षा उत्कृष्ट भी लेना है तो असंख्यात लोग का डिफरेंस, वहाँ पर भी उन्होंने कारण क्या बताया, सूक्ष्म में रहने का काल। पर वहाँ पर भी हम ऐसा लेंगे, सूक्ष्म और बादर में भी घूमता रहे मान लेते हैं, परंतु वो अनंत काल है, परंतु उसमें असंख्यात लोग के बाद वो जरूर उत्कृष्ट परिणाम करेगा ही करेगा, ऐसे यहाँ पर भी लेना
है
ना, ऐसा मत लो। वो तो नियम से करेगा, वो तो नियम से करने वाला तो बादर में ही है, तो इतने काल के बाद वो लौट कर, क्योंकि हमारी मार्गणा एक इंद्रिय की रखनी है, तो इतने काल के बाद वो उत्कृष्ट करेगा ही करेगा, ऐसे यहाँ जगन्य करेगा ही करेगा, ऐसा ले सकते हैं। यानी इन्होंने जो दोनों ओर वही कारण बताया कि वहाँ रहने का काल बताया, परंतु इतने काल में उसको जगन्य करेगा, ये उसका अर्थ है। आयु कर्म के जगन्य अनुभाग बंध के जगन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल चार समय का है, यानी वो मध्यम परिणाम में आयु बनती है जघन्य उसके बाद, तथा अजघन्य अनुभाग बंध के जघन्य काल एक समय का खुलासा नाम और गोत्र लिखापन, नाम और वेदनीय कर्म के समान है, मध्यम परिणाम है वहाँ पर। आयु कर्म का निरंतर अंतर्मूर्त काल तक बंद होता है, इसलिए इसके अजगण्य अनुभाग बंद का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। आयु कर्म एक समय तो होता है, अजगण्य का एक समय से लेकर अंतर्मूल तक होता, ये हो गया। गोत्र कर्म का जगन्य अनुभाग बंद, सातवीं पृथ्वी के नारकी के संयुक्त के सन्मुख होने पर अंतिम अनुभाग बंद में अवस्थित होने पर होता है, इसलिए इसके जगन्य अनुभाग बंद का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा, वो तो हमने पहले देखा था। इसके अजगण्य अनुभाग बंद का काल जिस प्रकार चार घाती कर्मों का घटित करके बतलाए हैं, उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए। यानी वह हाँ वह अनादि अनंत वगैरह बताया था ना, अनादि अनंत अनादि शांत और साधि शांत, साधि और शांत कब होता है जगन्य, दो श्रेणी के बीच में साधि शांत, वो अंतर्मूर्त से अर्धपुद्गल परावर्तन तो बन जाता है। यहाँ ओघ के समान मत्स्य ज्ञानी आदि छह अन्य मार्गणाओं का निर्देश किया है। वो छह मार्गणा कौन से, मत्स्य ज्ञानी होगी, श्रोता ज्ञानी है, असंयत है, अचक्षु दर्शनी, भव्य और मिथ्या दृष्टि। सो इनमें भव्य मार्गणा के सिवाय शेष मार्गणाओं में स्वामित्व की अपेक्षा कुछ भेद रहने पर भी, भव्य में तो सारी वो तो क्षपक की बात भी घटित होती है, परंतु अन्य मार्गणा में जहाँ श्रेणी नहीं है वहाँ उसकी विशुद्धि जहाँ संयम के सम्मुख वगैरह होती है वहाँ ले लेना चाहिए। भव्य शेष मार्गणा में स्वामित्व की अपेक्षा कुछ भेद रहने पर भी काल प्ररूपणा ओग के समान अविकल बन जाती है, वो एक समय घटित हो जाता है, इसलिए इनमें काल का निर्देश ओग के समान किया है। यही रुकेंगे हम। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हुरु।